दान लुटाने वाले, सद ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद ज्ञान सुनाने वाले। आठों ही प्रहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाए, वरदान लुटाने वाले, सद ज्ञान सुनाने वाले।
ओम शांति। मधुबन में बाबा के घर में सेवा का चांस मिलना, इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा। क्योंकि सेवा से भाग्य तो बनता ही है, लेकिन सेवा के साथ साथ जो निरंतर याद का अनुभव है, कर्मयोगी जीवन का अनुभव है, वो मधुबन में जैसा हो सकता है वो कहीं भी नहीं हो सकता। तो सेवा करते कर्मयोगी आत्मा हूँ, फरिश्ता स्वरूप स्थिति में रहकर कर्म करना जिसमें कोई भी साधारणता न हो, बोल की साधारणता, व्यवहार की साधारणता, खान पान की साधारणता, बाबा को साधारणता अच्छी नहीं लगती। बाबा हम बच्चों को बहुत महान आत्मा की नजर से देखते हैं। तो अगर कर्म योग का बैलेंस है तो साधारणता अपने आप समाप्त हो जाएगी। साधारणता समाप्त हो जाए और पुरुषार्थ में जो आज बाबा ने कहा कि आत्मा गैलप करे, कोई भी प्रकार की कमजोरी कमी न रहे, विकर्म न हो, लास्ट आते हुए फास्ट जाने का अनुभव हो, किन किन बातों का ध्यान जरूरी है, कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। और अगर वो नेचुरल स्वरूप में ध्यान में रहती हैं, तो अपने आप हम गैलअप कर सकते हैं। वैसे तो मधुबन में आकर के आप सभी अपनी उन्नति का अनुभव तो करते ही हैं। गैलअप का अर्थ क्या है? उन्नति होती रहे, गैप जो है वो समाप्त हो जाए पुरुषार्थ का, आत्मा अपनी उन्नति की चोटी पर चढ़ती कला की ओर आगे बढ़ती चले। इसके लिए बाबा कहता अपने आप पर कृपा करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। तो बाबा भिन्न भिन्न रीति से हम बच्चों का पुरुषार्थ आगे बढ़ाता रहता है, गैलअप कराता रहता है। लेकिन आज मैं आपको एक विधि बताता हूँ जिससे आप सभी गैलअप कर सके, सचमुच गैलअप हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उन्नति होती हुई दिखाई दे, लास्ट आते हुए भी थोड़े समय में फास्ट स्थिति का अनुभव हो। सेवा तो कर रहे हैं, सेवा का पुण्य जमा हो रहा है, खुशी मिल रही है, हल्कापन अनुभव हो रहा है, क्योंकि ऐसी सेवा नहीं है जो भारी बना दे। लौकिक सेवाएं, लौकिक जवाबदारियां भारी बनाने वाली होती, और बाबा के घर की सेवा हल्का बना देती, भारीपन खत्म हो जाता है। कोई भारीपन लगता है कि मैं भारी हो गया, ये सेवा मुझे मिल गई? चाहे जितनी सेवा हो, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे किया, सेवा कर लिया और फ्री हो गए, मन और बुद्धि फ्री है, इसलिए कोई बोझ नहीं है, क्योंकि बाबा का घर है, बाबा की सेवा है, कराने वाला करा रहा है। लेकिन सेवा में हमारी उन्नति निरंतर होती रहे, किन किन बातों का ध्यान जरूरी है, किन बातों का ध्यान रखें तो हमारी सदा उन्नति होती रहे, डेवलप हम करते चले, आगे बढ़ते चले, लगे कि मेरे कदम आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर आगे बढ़ रहे हैं तो उसकी निशानियां हमारे चलन और चेहरे से दिखाई देनी चाहिए। अगर दिखाई नहीं देती हैं और हम कहें हमारी बहुत अच्छी स्थिति है तो कौन मानेगा उसको। इसलिए दिखाई देनी चाहिए सचमुची आत्मा कैसी थी और कैसी हो गई। निरंतर योगी, निरंतर सहज याद, ज्ञान का चिंतन चलता रहे, तो ऐसी स्थिति बनाने के लिए किन किन बातों का ध्यान जरूरी है। रखते तो हैं ध्यान सभी, लेकिन एक बहुत सहज रीति से उन्नति हो, किन बातों का ध्यान जरूरी है बताओ माता है? ध्यान तो रखती हो ना, किस बात का ध्यान जरूरी है? दिल से सेवा करें। अच्छा, सेवा एक सब्जेक्ट है। बाबा तो कहता है सेवा की सब्जेक्ट, सेवा का बल आपको आगे बढ़ा रहा है या चारों सब्जेक्ट नंबर वन है? केवल एक सब्जेक्ट तो नहीं चाहिए ना। सेवा से तो खुशी मिलती है, दुआएं मिलती हैं, हल्कापन अनुभव होता है, एक सेवा का बल है जिससे माया जीत बन करके चल रहे हैं। लेकिन एक सब्जेक्ट में सिर्फ सेवा करे, चारों सब्जेक्ट का बैलेंस ना हो तो भी पास बिताना भी नहीं बन सकता है। चारों सब्जेक्ट का बैलेंस चाहिए। तो नंबर वन आने के लिए, लास्ट आते भी फास्ट जाने के लिए एक बहुत सहज सरल पुरुषार्थ, अपनी नेचर को बहुत इजी बनाओ, इजी नेचर, मोल्ड होने वाली सहज रीति से, जब जिस परिस्थिति में जैसा समय, जैसा स्थान, जैसी सेवा, जैसा व्यक्ति, जैसा स्थान, अपने आप को इजी नेचर से सेट कर लो, एडजस्ट कर लो। तो सबसे जरूरी है कि अगर हम कहीं भी किसी भी परिस्थितियों में हैं और थोड़े समय के लिए अपने आप को सेट कर देते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, तो इजी नेचर उसके लिए जरूरी है। कई बहुत टाइट नेचर वाले होते हैं, नहीं मैं तो नहीं बदल सकता, मैं तो नहीं सहन कर सकता, मैं तो इनके साथ नहीं चल सकता, स्वभाव इजी नहीं, बहुत टाइट है। तो बाबा कहता अपना सरल स्वभाव बनाओ। सरल ऐसा नहीं जो माया आ जाए, लेकिन स्वभाव सबके साथ मिलनसार वाला हो, जिससे हम इजी नेचर से हर एक के साथ सेट होकर के चल सके। तो ये एक पहली बात है कि पहले तो हम अपने आप को सेट करें इजी नेचर से, और जो पुरुषार्थ करें उसमें अटेंशन पूरा हो। ऐसे नहीं पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थी हैं, लेकिन अटेंशन वाला पुरुषार्थ चाहिए। पुरुषार्थ है क्या? हर बात का अटेंशन। कोई भी ऐसा संकल्प न चले, कोई ऐसा बोल न निकले, कोई ऐसा कर्म न हो जो हमारे ब्राह्मण कुल की मर्यादा के विपरीत हो, श्रीमत के का उल्लंघन हो रहा हो, अटेंशन सिर्फ। हर बात में बाबा कहता है सोच लो, ये जो मैं संकल्प कर रही हूँ, ये जो बोल बोल रहा हूँ, ये जो कर्म करने जा रहा हूँ, ये जो हमारा व्यवहार है, क्या यह श्रीमत के अनुकूल है? और अगर है तो कर लो, नहीं है तो छोड़ दो। इसका नाम है अटेंशन वाला पुरुषार्थ। तो अगर लास्ट आते भी फास्ट जाना है तो दूसरी बात है अटेंशन वाला पुरुषार्थ हो, मेहनत वाला नहीं, टेंशन वाला नहीं। क्या करूं, मुझे तो बहुत टेंशन हो गया है, 4 बजे उठना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, टेंशन नहीं, बहुत सरल रीति से अटेंशन है, अपने आप सब होता है। अटेंशन अगर हमारा है, मुझे मर्यादा के अंदर रहना है, मुझे श्रीमत के अनुसार चलना है, मुझे बाबा की हर आज्ञा का पालन करना ही है, आज्ञाएं तो सबके पास है, बाबा की सबको मिली हुई है कि ये आज्ञा बाबा ने दी है, लिस्ट सबके पास है, बाबा की आज्ञाओं की लिस्ट है सबके पास, सभी आज्ञाकारी तो हो ही बाबा के, बाबा की आज्ञाओं की लिस्ट अपने पास होनी चाहिए। क्योंकि इस बारी जब बाबा मधुबन वालों से मिल रहे थे तो एक बात एक लाइन में कह गए, बोला जो बाबा चाहता है वो मैं करता हूँ, ये चेक करो, रियलाइज करो, जो बाबा चाहता है, चाहता माना जो बाबा की आज्ञाएं हैं, मुरली के अंदर सब आज्ञाएं बाबा की आती हैं, कैसे रहना है, कैसे सोना है, कैसे खाना है, कैसे सैर करनी है, कैसे सेवा करनी है, कैसे संबंध निभाना है, सब प्रकार की आज्ञा दी है ना बाबा ने, नहीं पता है, सब कुछ मालूम है, कैसे कैसे चलना है, सुबह से रात्रि तक, आंख खुलते ही आज्ञा दी है, सबसे पहले आंख खुलते ही मेरे से मिलन मनाओ, एक बाबा दूसरा न कोई, ये स्मृति में आए कि मैं आत्मा परम धाम से अवतरित हुई हूँ, इस शरीर में प्रवेश किया है, आज्ञा दी है बाबा ने। आंख खुलते ही पहले संकल्प में बाबा याद आए, अमृत वेले बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान करो, शक्ति लो, सकाश लो और फिर सारे विश्व को दो। फिर बाबा की याद में रह करके शरीर को स्नान पानी कराओ, स्वच्छ बनाओ, आज्ञा है। ये मंदिर है, भगवान का प्रिय मूर्ति आत्मा है। हमारे बाबा, हमारा बाबा हमारा प्रिय है, लेकिन बाबा कहता है बाबा की जो प्रिय मूर्ति वो आत्मा है। कहाँ रहती है? इस मंदिर में रहती है। इसको उसी भावना से इसको सजाओ, उसको श्रृंगार करो, उसको तैयार करो। फिर पढ़ाई पढ़ो तो समझो भगवान मुझे पढ़ाने आया, इंसान नहीं पढ़ा रहा, दादियां नहीं पढ़ा रही। ये मुरली किसकी है, किसने कहा है? स्टडी करो बाबा की, बाप पढ़ाई रोज करो, कभी मिस नहीं करो मुरली। कौन मुझे पढ़ाने आता है, कहाँ से पढ़ाने आता है? बाबा ने हम सबको सवेरे से रात तक के लिए जो श्रीमत दी है, आज्ञाएं दी हैं, वही बाबा की चाहना है। वही बाबा हमसे चाहता है कि बच्चे मेरी आज्ञा की श्रीमत की लकीर के अंदर रहकर हर कर्म करें। आत्मा समझ करके बात करो, ब्रकुटी में देख करके बात करो, जिससे क्रिमिनल आए न हो, देह पर दृष्टि न जाए, आज्ञा है। कोई भी कर्म करते हो तो बाबा की याद पहले हो, जैसे भी गीत में था ना, पहले बाबा को याद करो, दो घड़ी भी याद करके फिर कोई काम शुरू करो। बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल करो, मन के संकल्पों को शांत करो, भोजन खाते समय बाबा की याद में रहो, भोग लगा करके भोजन खाओ, बाबा की याद में सो, बाबा की याद में उठो, सैर करने जाओ तो बाबा को साथी बना करके जाओ, व्यर्थ बातें नहीं करो, बाबा की याद में रह करके सैर करो। तो हर कर्म के लिए ऐसा कोई बाप नहीं होगा, ऐसा कोई शिक्षक नहीं होगा जो हर कर्म के लिए शिक्षा दे, हर कर्म के लिए आज्ञा करे कैसे कैसे करो। तो बाबा ने हम बच्चों को जो श्रीमत दी है, जो आज्ञाएं की हैं, सवेरे से रात तक के लिए हम सभी अगर उसी आज्ञा प्रमाण चल रहे हैं सिर्फ अटेंशन से, तो अटेंशन से लास्ट सो फास्ट जा सकते हैं, और कोई अधिक पुरुषार्थ नहीं, सिर्फ अटेंशन का पहरा है। और तीसरा एक ध्यान ये है कि जो बोल हम बोल रहे हैं ना, वो हंसी मजाक के न हो, अधिक न हो। बोल को कहा जाता है ये अनमोल है, मोती है। अगर किसी का बोल पर अपने ध्यान है तो बहुत सारी व्यर्थ से बच सकता है, बहुत एनर्जी उसकी बच सकती है। अधिक बोलने वाला जरूर कहीं न कहीं व्यर्थ बोलता है, इसलिए बोल ऐसे मधुर हो जो दूसरों को प्रभावित करने वाले हो, दूसरा का कल्याण करने वाले हो, संबंधों में मधुरता लाने वाले हो, नहीं तो बोल से संबंध बिगड़ जाते हैं। और संबंध बिगड़ गए तो क्या होगा, योग लगेगा? अगर आपसी संबंध हमारे ठीक नहीं है, कोई हमने ऐसा बोल बोल दिया आपस में, तू तू मैं कर लिया, हंसी मजाक में भी कई बार बोल देते हैं तो कईयों को बहुत दिल में पहुंच जाता है, लग जाता है कि मेरे को ऐसा क्यों बोला, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। साथ में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, काम भी करते हैं, और फिर हंसी मजाक में भी कोई एक शब्द बोल दें तो कईयों को बहुत पिंच हो जाता है। इसलिए बोल पर बहुत ध्यान चाहिए, नहीं तो संगठन में जो स्नेह बढ़ना चाहिए उसके बजाय दूरियां बढ़ जाती है, सहयोग नहीं मिलता, एक दूसरे के प्रति घृणा हो जाती, नफरत हो जाता, बैर हो जाता, और फिर योग नहीं लगता, टकराव की स्थिति पैदा हो जाती। जिसको बोल दिया, जिसके दिल में थोड़ा सा भी दर्द हुआ, वो क्या करेगा, वो उसको याद करता रहेगा कि मेरे को इसने ऐसा क्यों बोला, मैंने ऐसा क्या किया, उसके संकल्प उसको डिस्टर्ब करते रहेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कोई भी शब्द ऐसा न निकले जो किसी की आत्मा को दुख पहुंचे। सबको सुख देने वाला बोल जो जरूरी है, जो काम का है, इंद्री है, मुख मिला है बोलने के लिए, ऐसे नहीं मुख को मौन में ले जाओ, एकदम बंद कर दो, सेवा में लगाओ, इससे भी काम लो, लेकिन जितना जरूरी उतना बोलो, अधिक नहीं। और चौथी एक बात है, जो खजाने आपके पास है उनको सफल करो। सबसे बड़ा खजाना जो आज बाबा ने हमारा ध्यान खिंचवाया है, आप सभी विश्व कल्याणकारी जवाबदार आत्माएं हो। लौकिक में भी माँ बाप बच्चों की पालना करने के जो निमित्त होते हैं, रचयिता होते हैं, उनका ध्यान होता है कुछ भी व्यर्थ खर्च न हो, इकोनॉमी से चलते हैं। क्योंकि परिवार की पालना करनी है, जितनी कमाई है उसके अंदर सबकी पालना होनी चाहिए, कर्ज न लेना पड़े, उधार न लेना पड़े, बहुत ध्यान रखते हैं। तो हम सबका बहुत बड़ा परिवार है। बाबा कहता कितना बड़ा परिवार है, अगर ब्राह्मण परिवार भी देखो तो इतना बड़ा है, लाखों के अंदाज में हो गया, और विश्व ही सारा परिवार है। सभी आत्माओं की पालना करनी, शक्ति देनी है, सकास देनी है, मनसा द्वारा उनके दुख हरने हैं, कमजोरियां दूर करनी है, कितनी बड़ी जवाबदारी है। तत्व तो इतने प्रकृति इतनी तमो प्रधान हो गई है, कहीं न कहीं परेशान कर रही लोगों को, कहीं सूखा पड़ रहा, कहीं बाढ़ें आ रही, कहीं अति में जा रहा सब क्षेत्र। तो ऐसे समय पर जरूरत है हमारे अच्छे वाइब्रेशन की, हमारी अच्छी मनसा की। बाबा कहता जवाबदारी इन बच्चों की है, मेरे बच्चों की है, इसलिए जवाबदार बच्चे सिर्फ दो शक्तियों को बचाओ, आपके समय की संकल्प की, समय और संकल्प की शक्ति कहीं भी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। समय व्यर्थ न जाए, बहुत बड़ी शक्ति है, जवाबदार आत्माएं हो, ये खजाना है आपका। जैसे चार खजाने बाबा ने इस बारे बताया ना मुरली में, याद का, ज्ञान का, धारणा का, सेवा का, वो तो बाबा ने एक जनरल रीति से नए बच्चे बैठे थे उनके सामने मुरली चलाई, लेकिन जब हम सभी के सामने बाबा कहते हैं तो बहुत गहरे खजाने हम बच्चों को बताते, तुम बच्चों कितने खजाने मिले हुए हैं। तो समय सबसे बड़ा संगम युग का अमूल्य खजाना है, अनमोल है। समय हमारा ऐसे इतने जा रहा है व्यर्थ में, इधर बैठे उधर बैठे, हंसी की, मजाक किया, बातें किया, टाइम वेस्ट। बाबा कहते हैं इसको चेक करो, कहीं भी व्यर्थ न जाए, बहुत अमूल्य है। जितना समय मिले एकांत में जाओ, योग करो, बाबा की कुटिया में जाओ, बाबा के कमरे में जाओ, नहीं कोई सेवा है बैठ करके पढ़ो बाबा की मुरलियां, कुछ लिखो, मन को बिजी रखो, इधर उधर भागे नहीं, सफल करो, समय को सफल करो, कहीं भी व्यर्थ न जाए। बहुत बड़ी शक्ति है आपके पास, है श्वास की बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि बाबा कहता जिन्होंने समय को सफल किया है ना, वो पूरा समय राज्य करेंगे। नहीं तो कुछ किसी समय पूरा कल्प में थोड़े समय के लिए राज्य मिलेगा, फिर गंवा देंगे, कोई छीन लेगा, उसने समय को गंवा दिया। तो जो समय का कदर करते हैं वो पूरा समय राज्य करते हैं, जो श्वास का कदर करते हैं उनकी श्वास कभी बंद नहीं होती, ऐसे जल्दी हार्ट अटैक नहीं होता है, श्वास उनकी सफल हो जाती है, सारा कल्प उनका निरोगी काया रहती, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। गुण सफल करते हैं तो सारा कल्प उनके गुणगान होते हैं, वैल्यू किया ना गुणों की, वैल्यूबुल बन गए तो सारा कल्प लोग भक्ति के अंदर भी हमारे गुण गाते रहेंगे, वैल्यूबुल बन गए। शक्तियां अगर हमने सफल की हैं, इस समय शक्तियों को कार्य में लगाया है, सहन शक्ति को काम में लगा लिया, समाने की शक्ति जब समाने की जरूरत पड़ी समा ली, कभी सामना करने की शक्ति बनी सामना कर लिया, परखने की जरूरत पड़ी परख लिया, निर्णय कर लिया, अगर हमने शक्तियों को सफल किया है, समय पर काम में लगाया है, सफल करना माना, सफल करना, सफल करना माना यथार्थ की तरफ से लगा देना, यथार्थ की तरफ लगाना माना सफल करना, व्यर्थ की तरफ लगाना माना गंवाना। तो जहां जरूरी है वहां पर लगाया, तो अगर हम शक्तियों को इस समय सफल करते हैं, समय पर काम में लगाते हैं, तो सारा कल्प हम शक्तियों के आधार से निर्भर है, कोई भय नहीं होगा। जिसके पास शक्ति होती है ना, उस पर कोई शत्रु वार नहीं कर सकता, वो भयभीत नहीं होता है, शस्त्र है शक्तियां, शस्त्र है। तो बाबा कहता है अगर शक्तियों को सफल किया है, शक्तियों को काम में लगाया है, तो तुम पूरा कल्प निर्भय राज्य करोगे, भयभीत नहीं होगे, पता नहीं कोई हमारे राज्य को छीन न ले, कोई चढ़ाई न कर दे, कोई कब्जा न ले ले, ऐसा राज्य नहीं होगा भयभीत वाला, दुनिया में जैसा आज है, मैं सीट कोई छीन नहीं सकता। तो बाबा कहता है इस समय तुम अपनी शक्तियों को सफल करो, गुणों को सफल करो, ज्ञान धन है तो धन को सफल करो, ज्ञान धन है समझदार बन गए, ज्ञान माना समझ, और जो इस समय समझदार बच्चे हैं वो सारा कल्प किसी की राय नहीं लेंगे, जरूरत नहीं राय लेने की, बुद्धिमान बन गए, वजीर की जरूरत नहीं, गुरुओं की जरूरत नहीं। हमारे राज्य में वजीर होंगे क्या? गुरु होंगे? सत्ययुग में गुरु होंगे? जरूरत ही नहीं है, वजीरों की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ज्ञानी तो आत्माएं हैं, समझदार हैं। इस समय ज्ञान के खजाने को सफल किया है, और धन को अगर सफल किया है किसी ने, तो कोई के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े, पूरा कल्प नहीं फैलाना पड़ेगा। अगर इस समय हमारा धन सफल ना हो, हम कंजूसी करते रहें, जल जाए, आग में चला जाए, डूब जाए, बैंक में पड़ा रह जाए, सफल अगर ना हो बाबा के कार्य में न लगे, तो क्या होगा? हाथ फैलाना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहता, सफल कर लो जो कुछ भी तुम्हारे पास है, जो शक्ति है, तन की शक्ति है, मन की शक्ति है, धन की शक्ति है, कोई भी विशेषता है, कोई भी कला है, बाबा की सेवा में लगाओ, सफल करो, व्यर्थ न जाए। तो अगर लास्ट ऑफ फास्ट जाना है तो क्या करना होगा? सफल करना, कुछ भी व्यर्थ न जाए। जो आए हैं लास्ट में, अगर ध्यान रहे कि मेरा कुछ भी सफल व्यर्थ न जाए, सब सफल हो, कैसे भी करके मैं इसको सफल कर लूं, लगा दूं बाबा की सेवा में। सेवा में लगाना माना सफल करना। अगर नहीं लगाया, सिर्फ रखा रह गया, तो सफल नहीं होगा। इसलिए सफल करने से सफलता मिलती है और हम लास्ट ऑफ फास्ट जा सकते हैं। पांचवी बात एक है, सब प्राप्तियां होते हो भी, सब साधन होते हो भी, सब सुविधाएं होते हो भी, बुद्धि में बेहद का वैराग्य मर जाए। क्यों वैराग्य की जरूरत क्यों है? बाबा कहते हैं इसको इमर्ज करो। इस साल जब शुरू हुआ, बाबा ने नए साल की मुरली शुरू की, तो बाबा कहा इसी समय से वैराग्य को इमर्ज करो, इससे विनाश होगा, इसके बिना विनाश नहीं होगा, इसके बिना नई दुनिया की स्थापना नहीं होगी। जब तक हमारा कहीं भी अटैचमेंट है ना, लगाव है, फंसे हुए हैं धंधे में, धोरी में, बाल बच्चों में, गृहस्थी में, व्यवहार में फंसे हुए हैं सभी, माना वैराग्य नहीं है। वैराग्य क्या करेगा? सन्यासियों को अगर वैराग्य है, पहले वैराग्य है फिर सन्यास किया, ऐसे नहीं किया। ऐसे घर छोड़ सकता है कोई? अपनी बीवी बच्चों को छोड़ सकता है? अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ सकता है? वैराग्य, अरे सब संसार तो असार है, ये तो रहने लायक ही नहीं है, तो बहुत दुख है यहाँ पर, बहुत माया है, तो विकार जहरीले हैं, काटने वाले हैं, तंग करने वाले, वैराग्य आ गया सबसे। तो वैराग्य है तो सन्यासियों ने क्या किया? घर को ही छोड़ दिया, स्त्री का ही मुख नहीं देखना, छोड़ दो बस, सन्यास कर दिया। तो बाबा कहता है वो तो है हद का वैराग्य, यहाँ से गए वहां जंगल में फंसे जाके, जंगल भी तो है ना, वैराग्य कहाँ हुआ? वहां रह करके अगर बुद्धि की खींच होती रहे तो भी वैराग्य नहीं हुआ, याद आता रहे। इसलिए तुम रहो अपने घर गृहस्थ में, रहो अपने व्यवहार में, रहो संसार में, सब कुछ कर्म करो, लेकिन बुद्धि से सब कुछ भूल जाओ, सब मरे पड़े हैं, मेरा कुछ नहीं, जरा भी कहीं भी अंश मात्र भी लगाव ना हो, राग ना हो, मैंपन ना हो, मेरापन ना हो, नहीं तो वैराग्य नहीं कहलाएंगे। इसलिए वैराग्य वृत्ति अंदर से इमर्ज हो, सब प्राप्तियां हैं, सब साधन है, राज्य भी है, लेकिन राज्य के साथ साथ ऋषि है, ऋषि माना तपस्वी है, वैरागी है, कुछ नहीं चाहिए, अनासक्त वृत्तियां हैं। तो ऐसी वैराग्य वृत्ति अगर हमारे अंदर इमर्ज हो जाए तो क्या होगा? अगर जिसके अंदर वैराग्य वृत्ति होगी वो विकारों से सहज मुक्त हो जाएगा, नहीं तो वो खींचते रहेंगे विकार, ये छोड़ने की मेहनत करेगा, एक छोड़ेगा दूसरा खड़ा हो जाएगा। जब तक अंदर से वैराग्य नहीं है तब तक इन विकारों में जीतने में मेहनत है, कुछ न कुछ उल्टा होता रहेगा, अवज्ञा होती रहेगी, परेशान होते रहेंगे, युद्ध करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, विजयी नहीं बनेंगे। विजय का आधार है वैराग्य, तभी विजय हो सकती है जब वैराग्य है, नहीं तो नफरत आ जाए उससे, घृणा आ जाए, नहीं चाहिए, छोड़ दिया ना बस खत्म, अपने आप बुद्धि उधर नहीं जाएगी। लेकिन जब तक वैराग्य नहीं है, बार बार स्थूल में कर्म से छोड़ देंगे, मनसा शुद्ध नहीं होगी, मन उधर जाता रहेगा, बार बार खींच होती रहेगी। और अगर अभी तक भी खींच होती रहेगी, संकल्प चलते रहेंगे, विकल्प आते रहेंगे, बुरे संकल्प चलेंगे, तो किसी न किसी दिन माया हप कर लेगी, तो खड़ी है ना खाने के लिए। इसलिए बाबा कहता है वैराग्य वृत्ति को इमर्ज रखो, कुछ भी नहीं मुझे चाहिए, कोई भी आकर्षण नहीं, कोई भी स्थूल सूक्ष्म वस्तुएं मुझे नहीं चाहिए, कोई भी चाहे नहीं, न शारीरिक आकर्षण है, न स्थूल अथवा सूक्ष्म कोई भी मान शान इच्छा की कोई चीज की, अंदर से वैराग्य है तो यूज करो। बाबा यूज करने के लिए मना नहीं करता, लेकिन यूज करते हुए भी उसमें लगाव नहीं, उसके बिना मैं नहीं रह सकता, ये तो जरूरी है मेरे लिए। बाबा कहते हैं तो कब सब विनाशी, ऐसा वैराग्य अंदर से इमर्ज करो। और छठी एक बात है, अगर लास्ट सोफा जाना है तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे बुद्धि में बीती का चिंतन नहीं चलना चाहिए, जो बीत गया उसको फुल स्टॉप लगा दो। क्योंकि अगर बीती बातें बार बार याद आती ना मन के अंदर चलती रहती तो क्या होगा, वो मन को बहुत भटकाती है, मेरे से ऐसा हुआ मेरे से ऐसा हुआ। जो एक हिम्मत उमंग आना चाहिए, उत्साह आना चाहिए, वो बात बीती बातों को याद करके दुखी होते रहे, बीत गई सो बीत गई, ये तो कोई हिसाब किताब पूरा हुआ, मैं आत्मा अपना नया हिसाब किताब क्या बना रही हूँ, मैंने क्या अपने भाग्य में क्या अपना पार्ट ढूंढा है। तो इसलिए बीतती बातों का कभी भी चिंतन नहीं करना है, अच्छाई की रेस करो आपस में, अच्छाइयों की रेस करो, भाई इसके अंदर ये अच्छाई है, इसके अंदर ये विशेषता है, इसके अंदर ये कला है, बुराई की रेस नहीं करो। कई रीस करते हैं, कोई के अंदर इसको ये साधन है, इसको ये सुविधाएं है, इसके पास ये है, इसका इतना पोस्ट है, इसका इतना मान है, इसको इतना आगे बढ़ाया जाता है, मुझे नहीं, रीस करते हैं, उससे भेंट करते हैं। रीस करने वाला जो ईर्ष्यालु होता है ना, ईर्ष्या को कहते हैं रीस, ईर्ष्या होते है ना सूक्ष्म में, तो रीस कहलाती है। तो रीस करने वाला क्या करेगा, दूसरे के सुख में अपने को दुखी करता रहेगा, वो सुखी उसको सुख को देख करके जलता रहेगा खुद। तो रीस नहीं करनी किसी से भी, उसका भाग्य है, हमारा भाग्य अपना है। भगवान, तीन बातें बाबा के याद रखो, भगवान भाग्य और भावी, जिसके साथ तीन चीजें हैं। भावी हम जानते हैं हमारी बनी बनाई है, अब कुछ बननी ना ही, सब चिंता था कि जो जो होनी हो सब बना बनाया है। भावी को हम जान गए ना, निश्चित भावी है जो टल नहीं सकती है कि हमारा देवपद है, ये निश्चित है ना। तो भावी को हम जानते हैं, भगवान हमारा साथी है और भाग्य हमारा श्रेष्ठ कर्मों से हमारे हाथ में आ गया। तो जिसके साथ भगवान है, जिसके हाथ में भाग्य की कलम है, और जो निश्चित बनी बनाई भावी को जानता है, वो किसी के भाग्य से रीस क्यों करे, जरूरत है रीस करने की। कोई कैसा भी हो, कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो, कोई कितना भी पोस्ट वाला हो, कोई कितना भी अच्छा माना गया हो, मैं उससे रीस क्यों करूं। उसके पास भले सब साधन हो, बहुत उसको चांस मिलते हो, मेरे को कोई चांस ना हो, मेरा भाग्य मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है, भावी मेरे साथ है, क्या करेगा। अगर हम कोई से रीस नहीं कर रहे हैं तो हम बहुत अच्छा अनुभव कर सकते, बहुत अच्छी रेस कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, गैलप कर सकते हैं। अगर रेस करने लगेंगे तो दूसरे को देखेंगे, उसको गिराने की सोचते रहेंगे, कब गिरे, कब मुझे खुशी हो, इसका नुकसान हो मुझे खुशी हो, अगर उसका फायदा हुआ तो मुझे दुखी हो गए। ईर्ष्यालु हमेशा जलता रहेगा, दूसरे को आगे बढ़ते हुए देखेगा और खुद जलता रहेगा, अरे इसको इतना चांस मिल गया, ये तो बहुत आगे बढ़ गया, देखो इसके साथ क्या होगा, उसके लिए क्या करेगा, नेगेटिव सोचता रहेगा, कब इसका पता न हो, उसके बारे में ही चिंतन चलता रहेगा, इधर ग्लानी करेगा उधर करेगा, और अगर कोई उसकी ग्लानी और सुना देगा तो और खुशी हो जाएगी उसको, हाँ देखा मैंने सोचा था वही ठीक है। ईर्ष्यालु की निशानियां देखो, अगर जरा भी ईर्ष्या होगी ना अंदर में तो दूसरे को जरा भी आगे बढ़ते हुए वो देख नहीं सकता, खुश नहीं होगा। बाबा तो देखो हम बच्चों को आगे बढ़ता हुआ देख करके कितना खुश होता है, अगर कोई बच्चे की अच्छी स्थिति है वाह वाह करता है, क्या बच्चे का भाग्य है। बाबा हमारे भाग्य को देख करके इतना हर्षित होता है, जानता है बच्चे का भाग्य क्या है, और आत्माएं एक दूसरे का भाग्य देख करके जल जाती है, खुशी नहीं होती उनको। इसलिए हम बच्चे अगर बाबा समान बनना चाहते हैं तो हमें चेक करें, जैसे बाबा बच्चों को आगे बढ़ते हुए देख के खुश होता है, जैसे सब बच्चों को आगे बढ़ा रहा है, क्या मैं दूसरों को देख करके खुश होता हूँ, उनकी विशेषताओं से मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं उनसे अच्छाइयों में रेस करता हूँ, इसका अच्छा योग है, मेरा भी अच्छा योग हो, इसने अच्छा पुरुषार्थ किया, मेरा भी पुरुषार्थ अच्छा हो, ये अमृत वेला अच्छा करता हूँ, मैं भी अच्छा पुरुषार्थ करूँ, इसमें रेस करो, अच्छाई में रेस करो। और कोई बुराइयां हैं, कोई चीज उसने इकट्ठा करके रखी है, कुछ उसके कारण से मान मिल रहा है, शान मिल रहा है, कोई अच्छा है, उसको छोड़ दो, उसका अपना भाग्य है। तो बाबा हम बच्चों को कहता है, भगवान भाग्य और भावी को जान करके अपने पुरुषार्थ की रेस करो और गैलप कर लो, उन्नति करो, जिससे कोई भी ये न कहे कि क्या करूं, मुझे तो चांस नहीं मिला, मैं तो पीछे आया, मैंने तो बाबा को नहीं देखा, मैंने तो मम्मा को नहीं देखा, कुछ संकल्प करने की जरूरत नहीं। लास्ट आते हुए भी बाबा कहता अभी तक भी सीट डिक्लेयर नहीं हुई है, हुई है क्या, नंबर फिक्स हुए, रेस चल रही है, सभी दौड़ी लगा रहे हैं, चेयर रेस होती है ना, गेम देखिए चेयर की, यहाँ पर करते हैं कभी कभी पीस पार्क में, क्या करते हैं, सब दौड़ते हैं फिर बैठते हैं, लास्ट में विजयी एक दो होते हैं। तो ये चेयर की गेम रेस चल रही है, चेयर रेस है, सीट अभी तक कोई ने कवर नहीं की, बैठा नहीं है कोई, सब दौड़ रहे हैं। तो लास्ट आते हुए भी अगर हमारा पुरुषार्थ अच्छा है, इन कुछ बातों पर हमारा ध्यान है, सिर्फ इन बातों पर छोटी छोटी, तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए न व्यर्थ देखना है, न व्यर्थ बोलना है, न व्यर्थ सोचना है, न किसी से रीस करनी है। बाबा ने जो मंजिल दिखाई है, बाबा जो चाहता वो मुझे करना है, ठीक है। बाबा की चाहनाओं को याद रखना, लिखना क्या क्या बाबा मेरे से चाहता है, और जो चाहता है वो मुरली में सुना देता है, वो सुनाता है ना, आज भी कई बातें सुना दिया कि मैं बच्चों से क्या चाहता हूँ, बच्चों की दृष्टि कितनी शुद्ध चाहिए, कितनी शुद्ध पवित्र बुद्धि चाहिए, जरा भी क्रिमिनल ख्यालात नहीं चाहिए, उसके लिए योग बहुत अच्छा चाहिए, पढ़ाई पर पूरा ध्यान चाहिए, किसी से रीस नहीं करे, बाबा बहुत सारी शिक्षाएं रोज मुरली में देता है। अगर हमारा ध्यान उन बातों पर, कुछ बातों पर भी चला जाए ना, पांच छह बातें भी नोट कर लें, क्या बाबा ने इतनी अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी हैं, तो हम बाबा की चाहनाओं को पूर्ण कर सकेंगे। तो बाबा की जो शिक्षाएं मुरली के सिलसिले मिलती हैं, उन शिक्षाओं को नोट रखो डायरी के अंदर, और रोज देखो ये मैंने जो बाबा की शिक्षा है ना, बाबा की चाहना है, उसको पूरा किया। अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, किस लिए नहीं किया, कारण तो कुछ होगा, अलबेलापन है, भूल गया, स्मृति में नहीं रही, कोई का प्रभाव पड़ गया, कोई बातें हो तो उनको खत्म कर दो, ठीक है। तो लास्ट सो फास्ट जाने का रेस करो, पुरुषार्थ करो, समय मिलता है बाबा के घर में, सेवा तो निमित्त मात्र है, सेवा किया और बाबा की याद में मगन हो गए, अपने को रियलाइज करो, मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, मुझे बाबा ने क्यों चुना है, मुझे क्यों अपनी गोदी में बिठाया, अपने आप से बातें करो, तो आत्मिक स्थिति अपने आप बन जाएगी। बाबा कहते अपने आप से पूछो तो, मैं जो हूँ जैसा हूँ मैं अपने को जानता हूँ, कितना मेरा श्रेष्ठ भाग्य है, भगवान ने मुझे चुना है, भगवान की मेरे पर नजर पड़ी है, अपने आप से ऐसे ऐसे बातें करें, ठीक है। तो अपना अपना नशा अपने आप को घोटो तो नशा चढ़े, दूसरा चढ़ेगा तो नहीं चढ़ेगा, अपने खुद नशे में ले आओ, बाबा की मुरली सुनो और अपने नमस्ते में रहो, सारा दिन अच्छा बीतेगा, कभी कभी खुशी, कभी कभी गमी, कभी बहुत अच्छे हैं, कभी कभी कोई ना कोई भूल हो जाएगी, पाप हो जाएगा, मन उलझन में आ जाए। सबसे बड़ी सजा इस समय पता है कौन सी है, अगर किसी का मन उलझन में है, मूंझा हुआ है, खुशी नहीं है, ये बहुत बड़ी सजा है। सजा धर्मराजपुरी की और क्या होगी, ऊपर होगी तो देखा जाएगा। इस समय अगर किसी का मन ठीक नहीं है, उलझा हुआ है, मूंझा हुआ है, निराश है, उदास है, हताश है, उसने कुछ न कुछ विकर्म किया है तो उसकी सजा भोग रहा है, कुछ न कुछ उल्टा कर्म हुआ है, कोई कोई अवज्ञा हुई, सजा खा रहा है। नहीं तो बाबा का बना मन मन तो मौज में रहना चाहिए, डांस करना चाहिए, जब चाहे बाबा पास पहुंच जाए, आज्ञाकारी है, ठीक है। तो मन को मौज में रखना, मुझाना नहीं कभी भी, इतना खुशी में रहे, आनंदित रहे, जो योग लगा ही रहे, टूटे ही नहीं। तो मन को बहुत बहुत अच्छे अच्छे विचार से, बहुत खुशी के संकल्प करके मन को मौज में रखो, मूंझो नहीं, उलझो नहीं, कोई बात आती है तो उसका उत्तर बाबा की मुरली से ले लो, एकांत में बैठ करके बाबा से बातें कर लो, शक्ति मिल जाएगी। ओम शांति।